ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जजमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति निष्टुकी। तो श्रीमद्भागवतम स्कंद सात अध्याय सात श्लोक संख्या 34 श्लोक स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप मेरे पीछे दोहराएंगे। निशम कर्माणि गुणान तुल्यान, निशम कर्माणि गुणान तुल्यान, वीर्याणि नीला तनुभिः कृतानि। यदाति हर्षपूलक अश्रु गदगदम, नहीं रखा है, प्रोत्कंठ उद्गायति धोति नित्यति। निशम्या सुन करके कर्माणि, भगवत कर्मों के विषय में, गुणानि आध्यात्मिक गुणों का, अतुल्यान अतिमानवीय, विद्याणि अत्यंत शक्तिमान, लीला तनुभिः अनेक लीला रूपों अनेक लीला स्वरूपों के द्वारा कृतानि किए गए। यदा जब अतिहर्ष अत्यंत प्रसन्नता के कारण, उत्पुलक रोमांच अश्रु आंखों में आंसू का आना, गदगदम अवरुद्ध कंठ का अवरुद्ध हो जाना, उत्कंठ उत्कंठित होकर के, उद्गायते उच्च स्वर से कीर्तन करता है, रोति कभी कभी रोता है, नित्यते कभी नाचता है। अनुवाद तात्पर्य श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा, जो भक्ति के पद पर आसीन हो जाता है वह निश्चय ही इंद्रियों का नियंत्रक है और इस तरह वह एक मुक्त पुरुष हो जाता है। जब ऐसा मुक्त पुरुष या शुद्ध भक्त विभिन्न लीलाएं करने वाले करने के लिए भगवान के अवतारों के उन दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों के विषय में सुनता है तो उसके शरीर में रोमांच हो जाता है, उसके आंखों में आंसू बहने लगते हैं और आध्यात्मिक अनुभूति के कारण उनकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है, और कभी वह नाचता है और कभी कभी जोर जोर से गाता है और कभी रोने लगता है। इस प्रकार वह अपने दिव्य हर्ष को व्यक्त करता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद महाराज के द्वारा, भगवान के कार्यकलाप असामान्य होते हैं। उदाहरणार्थ जब वे रामचंद्र के रूप में प्रकटित हुए तो उन्होंने समुद्र पर सेतु बनाने का असामान्य कार्य किया। इसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। और यह सामान्य कार्य है, मूर्ख तथा धूर्त लोग जो दिव्य पद को प्राप्त नहीं हुए होते हैं वे भगवान के इन असामान्य कार्यों को मिथ्या अथवा काल्पनिक मानते हैं। किंतु जब मुक्त व्यक्ति या भक्त भगवान के इन असामान्य कार्यकलापों के विषय में सुनता है तब तुरंत ही आनंद विभोर उठता है और कीर्तन करने नाचने तथा जोर जोर से प्रसन्न होकर रोने के लक्षण प्रकटित करता है। भक्त तथा अभक्त के बीच में यही अंतर है। अवज्ञान दिविरंधस ज्ञानंजन शलाकन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनःभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्नवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजी साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण बाडां सहगण ललिता शिवशाखन वितंश्च मुखं करोति वाचालं पंगुमलंगयत गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमात श्री गुरुनलिन तारिणं श्री चैतन्य ईश्वर जयतं सुरत पंगौ मम मंदमते गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो श्री राधा मदन मोहन वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एवच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश वैराग्य युग भक्ति सम अपायन अनभिक्षुम अंधम करुणाम बुधिम पर दुख दुखी सनातन प्रभुम तमाश्रयामी सनातन प्रभुम तमाश्रयामी सनातन प्रभुम तमाश्रयामी। हरे कृष्ण। तो आप सब लोग का स्वागत है सुबह की इन भागवत कक्षा में। हम लोग इन भागवत में जो भगवान की दिव्य लीलाएं श्रवण कर रहे हैं ना उनका कीर्तन करते हैं तो उनका फल क्या होता है अथवा क्या होना चाहिए इसको इस श्लोक के द्वारा उनका अनुभव करने वाले श्री प्रहलाद महाराज अपने मुख से उनका वर्णन करते हैं। श्रवण कीर्तन का फल भगवान में अनुराग उत्पन्न करता है और ये अनुराग बढ़ करके भगवान के चित्त को भी विगलित कर देता है। तो श्री भगवान उन भक्त के द्वारा जो लीला कथा का गायन या कीर्तन हुआ था या उनका श्रवण हुआ था उसी रूप को उनके सामने वो प्रकटित करके उनको आनंदित करते आह्लादित करते हैं। लेकिन उनकी पहले शर्त ये है कि पूर्व के श्लोक में हम लोग देखेंगे 33 नंबर श्लोक में एवं निर्जित सर्वर्ग ही कहते हैं कि भगवान के भक्त भक्तों के आश्रय में अत्यंत अपने गुरु महाराज के आश्रय में जब इस प्रकार उन भगवान की भक्ति करते हैं कित क्रियते भगवती ईश्वर जो परमेश्वर श्री कृष्ण है उनकी भक्ति जब इस प्रकार व्यक्ति उन वैष्णवों के सानिध्य में करता है तो कहते हैं निर्जित सर्वर्ग ही सबसे पहले वो अपने चित्त में जो काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य इत्यादि षड़ रिपु है दुश्मन है हमारे उनको नित्राम जय कर लेता है और इसी कारण है हरि कथा भगवत कथा ही कारण बताया गया उन कथा के बल पर ये व्यक्ति आसानी से कर सकता है। जहां पर योगी इत्यादि को ये बहुत कठिनाई है और इतनी कठिनाई है कि वो लोग जीवन पर्यंत मेहनत करने के बाद भी उनको जो कुछ प्राप्त होता है एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य या कुछ विभूतियां प्राप्त होती है अगर उनमें उनका चित्त नहीं फंसता है तो फिर भगवान के उन एक पहलू जो भगवान की अंग कांति विशेष है उनके दर्शन का अवसर वो पाते हैं। लेकिन सबसे पहले निर्जित सर्वर्ग ही ये बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले श्लोक तो जिनके काम क्रोध मद लोभ मोह ये षड़ रिपु या मात्सर्य षड़ रिपु के ऊपर जय जिन्होंने कर लिया है जहां हमारा जय नहीं हुआ है इसलिए कथाएं हमें उसी प्रकार परमानंद रूप अनुभूत नहीं होती है स्वाभाविक है। कथा परमानंद देने वाली है इसी कथाओं के कारण कहते निश्चय कर्माणि गुणान तुल्यान उन अतुलनीय गुण श्री भगवान का जो गुणगण है या उन गुणों का वर्णन है उनकी तुलना कभी भी कोई प्राकृत गुणों से नहीं की जा सकती क्योंकि उनके समस्त अप्राकृत गुणावली है। इसलिए कहते अतुल्यान उनका प्रत्येक कार्य अद्भुत होता है। भक्ति प्राप्त व्यक्ति का कार्य भी अद्भुत होता है लेकिन मायाबद्ध कार्य का कहते मायाबद्ध जीव का कार्य साधारण होता है। जैसे साधारणता हम लोग इन काम क्रोध मद लोभ मोह इत्यादि का भोग करते हैं वो हम क्या भोग करते हैं वो हमें भोग लेते हैं चूंकि वो तो जितना भोग करते युवक होते जाते हैं और चाहिए तो भोग तो हमारा हो जाता है ना। हम सोचते हैं कि इन वस्तु को हम भोगते हैं, सर्वर्ग को हम भोग कर रहे हैं, नहीं, वो हमें भोगते। भोगाना भोगता वयमेव भोगता। ये भोग को हम क्या भोगेंगे, हम स्वयं भोगे जाते हैं। और भोग तो ऐसे ही बना रहता है, हमारे चित्त में बना रहता है और शरीर चल देता है। भोगने वाला जो शरीर है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, या उन काम क्रोध मद लोभ मोह, ते तो हृदय में बना रहता है, बल्कि और प्रबल अवस्था में वो चित्त में स्फुरित होकर के दूसरे शरीर के लिए जीव को बाध्य करता है। अथवा सर्वर्गान निर्जित्य नितराम जीतः, निर्जित का अर्थ ये है पूरा पूरा उनके ऊपर कंट्रोल आ जाता है। क्रोध का अवसर होने पर भी क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। ये भगवत भक्ति का प्रभाव है या भगवान की लीला कथा श्रवण का प्रभाव है। इस प्रभाव के कारण व्यक्ति के चित्त में जो कामनाएं आती तो है, लेकिन वो कामना परास्त रहती है, या वो कामना भगवत कार्य में परिणित हो जाती है, भगवान की सेवा में परिणित हो जाती है, इसलिए उनका कोई नुकसान नहीं है। और दूसरा सर्वभोग क्या है, क्या जय करना है, वो शरीर के मन के और प्राण के दो दो जो स्थितियां हैं उनके ऊपर जय करना है। जैसे जन्म मरण के ऊपर जय, निर्जित जन्म मरण, और मानसिक शोक मोह उसके ऊपर जय कराती है भक्ति, और प्राणगत भूख और प्यास, ये सर्वर्ग है। खैर इनके साथ जितने भी सर्वर्ग शास्त्र में बताए गए हैं, ये तो दो मैंने बताया, बहुत सारे, तो उन सर्वर्गों के ऊपर विजय केवल ये काम क्रोध मदलोभ मोह माचर्य, जब व्यक्ति के चित्त को छोड़ देता है तो उनको जय माना जाएगा, उन्होंने जय किया। बाकी कितना भी जय करने वाला व्यक्ति पराजित रहता है, क्योंकि रहता है माया में, और माया में सदैव जीव का पराभव होना और काम क्रोध के लोभ के साथ तो पराभव होना निश्चित है। तो पहले जय करना होता है। लेकिन हम लोग के हाथ में प्रभुपाद जी ने ये प्रोसेस दे रखा है कि आपको जरूरत नहीं पहले जय करने की, अभी कीजिए इसको श्रवण कीर्तन करते हुए, जो इसमें प्रोसेस बताए। आगे के कई श्लोक, पहले 28 के श्लोक को मैंने लिया था, उन 28 के श्लोक में कुछ बातें लिखी थी वो योग के विषय में। कहते योगो प्रवाहो उपरमम धीय बीज निर्हरणम, ये संसार बीज जो हमारे चित्त में पड़ा हुआ है उनको नितराम हनन करने के लिए, नितराम उनको मारने के लिए पूरा पूरा, तो कहते योग जरूरी है। तो योग तो कई प्रकार के हैं, इसको वर्णन करते हुए आगे प्रहलाद महाराज ने बताया, आप लोग श्रवण करते आ रहे हैं, उनका जरूरत नहीं। लेकिन खास करके भगवत भक्ति रूपी जो है भक्ति योग है उनके विषय में वो बहुत सुंदर श्लोक बताए। वो कहते हैं गुरु शुश्रूषा भक्त्या सर्वलब्ध अर्पण निश्च संगन साधु भक्ता नाम ईश्वर आराधने निश्च। ये हम लोग जो है इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि परम सद्भाग्य से भक्तों का संगति है और गुरु ग्रहण किया है, इससे बढ़कर संसार में कोई सौभाग्य नहीं है। जो सौभाग्य दिखाई पड़ता है वो केवल हमारे चित्त में कामना इत्यादि जो वास है उसके कारण दिखाई पड़ता है, अन्यथा वो कुछ है ही नहीं। चूंकि आज है कल नहीं रहने वाला, इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि सबसे बड़े परम लाभ या परम भक्ति प्राप्त कराने वाली विधि मन भगवत आराधन कैसे न गुरु और वैष्णवों के सानिध्य में जो हमको पूर्ण अवसर मिला है, इसी को भागवत में महासदभाग्य बोला गया है। कोटि सुकृते न लभ्यते, ये करोड़ों करोड़ों जन्म की सुकृति से भी इस प्रकार का भाग्य का उदय नहीं होता है। जदश्चया भगवत इच्छा से किसी किसी जीव को यह मौका दिया जाता है। भगवान की इच्छा है कि हम लोग उनके साधन भजन भक्ति करके इन कष्टमय संसार से अपने आप को परमानंदमय भगवत धाम में ले जा सके। ये उनकी स्पेशल भगवान की हमारे लिए व्यवस्था है, इसलिए श्रील प्रभुपाद महाराज जैसे उनके महान भक्तों की संगति में हमको आने का एक अवसर मिला है। यह अद्भुत अवसर या महाभाग्य के रूप में इस अवसर को माना जाएगा, और जो उनको हल्के में लेते हैं वो पीछे से पछताएंगे। बोले ठीक है, तो कई लोग आए हुए हैं, कई लोग नहीं है। देखिए प्रोपोर्शन कितना है पृथ्वी पर, और भक्त कितने हैं गिनिए, उंगली पर गिना जाएगा। इसलिए महासदभाग्य उत्पन्न हुआ है, और इसी से परम सदभाग्य महा महा सदभाग्य का वर्णन जो इस श्लोक में आया है, न निसम्य कर्माणि गुणान अतुल्यानि। कहते हैं उन भगवान के अतिमानी भी कार्य को, उनके कर्मों को सुन करके एक प्रेमी भक्त का चित्त गदगद हो जाता है, क्योंकि भगवान का वो प्रेमी है। अगर प्रेम भगवान को नहीं करते तो भगवान का गुणावली समझ में नहीं आएगा, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भक्ति से ही भगवान के चरित्र समझ में आते हैं। चरित्र समझ का अर्थ क्या है? चरित्र समझने का अर्थ है, कहते हैं उनका फल, कहते यदा अति हर्षो पुलकात, वो अति हर्ष में भर जाता है, क्योंकि ऐसा परमानंद का अनुभूति जीव को इस प्राकृतिक संसार में कभी हुआ ही नहीं। यह अतुलनीय परमानंद व्यक्ति की चित्त में उभरता है। कब? बोले गुणान अतुल्यानि कर्माणि निसम्य। भगवान के उन अतुलनीय गुणों का श्रवण करके उनके कर्मों के उनके द्वारा किए हुए, अच्छा कैसे करते हैं? बोले विज्ञानी लीला तनु भी ही। भगवान भोगाई तन से कुछ नहीं होता है, उनको लीला नहीं बोलते हैं, ये तो दुख भोग के लिए तन मिला हुआ या तनु हमारे पास शरीर मिला हुआ है, उनसे कुछ नहीं। लेकिन ये कहते हैं कि लीला तनु भी ही, अर्थात चिन्मय शरीर से भगवान के द्वारा की गई जो नाना प्रकार की वीर्य युक्त पराक्रम युक्त जो लीलाएं हैं, वो लीलाओं का वो श्रवण कीर्तन जब करता है, बस उसी लीलाओं का श्रवण कीर्तन हम बहुत समय से करते हैं। बताइए, नहीं करते तो मना कीजिए, लेकिन आगे के जो प्रहलाद महाराज ने बताया निर्जित सर्वर्ग, ये हमसे हो नहीं पाया, अभी हम प्रोसेस में हैं। बाकी अतुलनीय आनंद भगवान से जो मिलने वाला परमानंद है, वो परमानंद उन भक्तों के बिल्कुल हस्तगत वस्तु है जिनके पास विधि भक्ति है। विधि भक्ति का आचरण तो हम सब लोग करते ही हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि जो नवदा भक्ति है उनका हम लोग प्रत्येक दिन आचरण करते हैं। तो धैर्य पूर्वक इस आचरण में व्यक्ति को लगे रहना चाहिए, एक बहुत बड़ा तसल्ली देने वाला श्लोक है। आगे जाके क्या मिलेगा, या जब हमारा चित्त उन सर्गुण से ऊपर उठ जाएगा या प्रकृतिक तीन गुण से ऊपर उठ जाएगा, और जब ये विकार हमारे चित्त को विचलित नहीं करेगा, तब जाकर के भगवत प्रेम रूपी संपदा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन साधु भक्ता नाम लिखा है आराधना, कैसे आराधना करनी चाहिए ईश्वर की, उनको बता रहे ताकि गुरु के सेवन के द्वारा और महान वैष्णवों की संगति में तब उनके चित्त में वो हर्ष जो उत्पन्न होता है वो प्राकृत हर्ष नहीं है। यहां हर्ष लिखा है, कहते यदा अति हर्षो, जब उनका चित्त अति हर्ष में भर जाता है, अति आनंद में भर जाता है, तब कहते हैं उत्पुल्ल का, तब उनके शरीर में रोमांच होना चाहिए। इसी प्रकार का श्लोक एकादश स्कंध में देखा जाता है। एवं व्रत सक प्रिय कृत्या, इस श्लोक में स्पष्ट लिखा गया है। इस प्रकार व्रत पूर्वक नियम पूर्वक जो हरि कथा का श्रवण कीर्तन, एवं व्रत स्व प्रिय, अपने प्रिय भगवान का, देखिए प्रेम हमारा स्थापित नहीं हुआ है, स्वप्रिय एकमात्र भगवान के प्रेमी चित्त का बात है, जिनका चित्त केवल भगवान को छोड़ करके किसी को प्रेम नहीं करता है। और हमारा चित्त नाना वस्तु के ऊपर जाता है और अनेक प्रकार का रसास्वादन उनके द्वारा हम लोग लेते हैं, तो प्राकृत रसास्वादन लेने वाले व्यक्ति के प्रति ये आध्यात्मिक रस का आस्वादन करने की कैपेसिटी नहीं होती है। वो तो योग्यता तब पकड़ता है चित्त कि जब वो सड़ रिपु को बस में कर लेता है। इसीलिए उनके लोभ के लिए भक्तों को प्रार्थना भी करते रहना चाहिए, जो हमारे आचार्य ने प्रार्थना किया, गौरंग बनीते हबे उलग शरीर, ऐसा अवसर कब आएगा कि केवल गौरांग नाम का उच्चारण मैं करूंगा। नरोत्तमदास ठाकुर कहते और मेरा चित्त गदगद वाक्य शुद्ध हो जाएगा, हरि हरि बनीते नयन बहबे नीर गौरांग बलिते पुलक सारी। ये लालसा में जो स्तुतियां हैं उनका पाठ करते चलना चाहिए। हरि भक्ति करने वालों को चाहिए कि भक्तों के सानिध्य में भक्ति का शिक्षण लें, ये भक्त का सानिध्य है। जब हम नरोत्तमदास ठाकुर का कीर्तन करते तो नरोत्तमदास ठाकुर हमारे पास बैठे हुए होते हैं, हम उनका प्रत्यक्ष संग करते हैं। जैसे श्री प्रभुपाद कहते हैं कि मैं आपसे कहीं दूर नहीं रहूंगा, मेरी पुस्तक में मैं रहूंगा। हाँ, तो संग बहुत आसान है लेकिन हमारे पास समय नहीं है साधु संगति लेने का। बोले है ना, हम लोग क्लास बैठते हैं ना, हाँ तो नियम पूर्वक आते हैं बैठते हैं और नियम पूर्वक यंत्र युक्त जप कर लेते हैं, कुछ नियम कानून पालन करने के लिए कितना नियम बनाया है, क्या करे करना पड़ेगा, जो भी हो वो पड़ेगा। क्या है पड़ेगा माने फोर्स है। सुबह में आ रहा था मंदिर, पुजारी जी मिल गए आज, बोला ठीक है ना प्रभु जी आपको, अरे बोले यार 2 बजे उठना पड़ता है। मैं बोला क्या बात है, बोले आज हमारा टर्न है। पड़ेगा ये नहीं, प्रेमी भक्त को पढ़ना नहीं चाहिए, वो तो उल्लास के उल्लास में भर करके करता है, कोई बाध्य नहीं करता है उनको। ये तो प्रभुपाद जी का कृपा है कि अंदर रहने वाले भक्तों को बाध्य होकर के करना पड़ता है। बोले भारी पड़ता तो भारी पड़ो कोई भी हो, अगर रहना है तो पालन करो।